Om Shanti. 18th April 1982. प्रश्न है, संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को किस कर्तव्य में सदा तत्पर रहना चाहिए? उत्तर है, समर्थ बनना और दूसरों को भी समर्थ बनाना है। इस कर्तव्य में सदा तत्पर रहो, क्योंकि व्यर्थ तो आधा कल्प किया, अब समय ही है समर्थ बनने और बनाने का। इसलिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म सब समाप्त, फुल स्टॉप। पुराना चोपड़ा खत्म। जमा करने का साधन ही है सदा समर्थ रहना, क्योंकि व्यर्थ से समय, शक्तियां और ज्ञान का क्या होता है? व्यर्थ से समय, शक्तियां और ज्ञान का नुकसान हो जाता है। 18 अप्रैल 1982। प्रश्न, संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को किस कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है? तत्पर अर्थात लगे हुए रहना, एवर रेडी, तैयार। सबसे नजदीक कौन सा है? तत्पर रहना है, तैयार रहना है, हमादा। तो उत्तर क्या दिया बाबा ने? समर्थ बनना है और दूसरों को समर्थ बनाना है। इसी कर्तव्य में सदा तत्पर रहो, क्योंकि व्यर्थ तो आधा कल्प किया, व्यर्थ तो आधा कल्प किया। कौन सा व्यर्थ? अरविंद भाई, आज की मुरली से कौन सा कर व्यर्थ किया अब तक? दिवाली आज बोला है बाबा ने, सब व्यर्थ है। तुम संगम पर खुशियां नहीं मना सकते, ब्राह्मण अपने घर में दिए नहीं जलाए, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ मनी। तुम वनवाह में हो, तुम्हें नश्वरमोह बनना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि व्यर्थ तो आधा कल्प किया, अब समय ही है समर्थ बनने का और बनाने का। इसलिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म सब समाप्त, फुल स्टॉप। पुराना चोपड़ा अर्थात, चोपड़ा मतलब ओल्ड अकाउंट बुक, चोपड़ा बुक होती है किताब, तो पुराना चोपड़ा खत्म। जमा करने का साधन ही है क्या है? सदा समर्थ रहना, क्योंकि व्यर्थ से समय का नुकसान होता है, और किसका नुकसान होता है? शक्तियों का, और यहां बाबा ने कहा ज्ञान का, ज्ञान का नुकसान होता है। 82 में बाबा ये मुरली चला रहे हैं। तो संगम युग पर बच्चों को किस कर्तव्य के लिए तत्पर रहना है? उत्तर है, समर्थ बनना है, समर्थ बनाना है, व्यर्थ को समाप्त करना है, पुराना चोपड़ा खत्म, संकल्प बोल और कर्म इन तीनों को समाप्त करना है। एक है समर्थ बनना, दूसरा है बनाना। बना कौन सकता है? जो समर्थ है। निर्विघ्न बनना, निर्विघ्न बनाना, शक्तिशाली बनना, शक्तिशाली बनाना, तपस्वी बनना तपस्वी बनाना, योगी बनना योगी बनाना, ज्ञानी बनना ज्ञानी बनाना, सभी में पहला चरण है स्वयं बनना। तो संगम युग पर इस कर्तव्य में तत्पर रहो, किस कर्तव्य में, स्वयं को शक्तिशाली बनाने में। कैसे बनाएंगे स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? संसार में हमेशा मनुष्य ने कल्पना की है सुपर पावर्स की। इसके लिए बच्चों की किताबों में कितनी सारी बातें आती है, ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान, बैटमैन, ये सब क्या है? उसने हमेशा सोचा है कि शक्तिशाली बनना है, पावरफुल बनना है। महर्षि अरविंद ने कल्पना की थी अति मानव की, सुपरमैन। कैसे सुपरमैन बना जाए? तो ये कामना हमेशा से रही है कि शक्तिशाली बन जाए, अमर हो जाए। भारत में जितने शास्त्र है उसमें जो राक्षस दिखाए तपस्या क्यों करते थे? अमर होने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न मनुष्य से न राक्षस से, न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे, कोई भी मुझे मार ना सके, न शस्त्र से न अस्त्र से कोई भी मुझे मार ना सके। ये सारे दिखाए हैं यहाँ पर भारत में। सभी के अंदर एक ही कामना है, शक्तिशाली बनने की, पावरफुल बनने की। जो योगी सब पूर्ण संसार की आसक्ति मोह छोड़ देता है वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, सुपर साइकिक पावर्स, अष्ट सिद्धियां, 64 सिद्धियां, आकाश में चलना, ईशित्व, अलग अलग सिद्धियां है ना, अहिमा गरिमा महिमा लगीमा, छोटा हो जाना बड़ा हो जाना, हल्का हो जाना भारी हो जाना, जो चाहिए वो प्राप्त कर लेना, संजीवनी विद्या, बहुत सारी शक्तियां है। तो हरेक ने इस देश में और उस देश में, पाश्चात्य जगत में भी, सभी ने शक्ति की कल्पना की है, सभी ने शक्तिशाली बनना चाहा है। फिर वो किसी भी रीति से दमन कर, दूसरों को दबाकर, दूसरों पर शासन कर, चाहे वो हिटलर हो, स्टालिन हो, इदी हो, मुसोलिनी हो, उन्होंने भी शक्तिशाली बनने की ही कल्पना की है। शक्ति, यहां बाबा भी कह रहे क्या करो, समर्थ बनो। कौन सा समर्थ? कहां क्या करे? जिम ज्वाइन करे? क्या करे? कैसे समर्थ होने? कौन से सामर्थ्य की बात कर रहे हैं? महाभारत में तीन प्रकार के बल की चर्चा है, बाहुबलम, बुद्धिबलम और योग बलम। बाहुबलम शारीरिक, शरीर से शक्तिशाली बन जाना, किसी को भी हरा सके ऐसे बन जाना। उससे भी बड़ी शक्ति पर है बुद्धि की, बुद्धि से शक्तिशाली बन जाना, इंटेलिजेंट, शार्प इंटेलेक्ट। परंतु उसके भी परे एक तीसरा भी बल है, आत्मबल, योग बल, स्पिरिचुअल पावर। तो बाबा कह रहे संगम युग पर तुम्हें तत्पर रहना है समर्थ बनने में और समर्थ बनाने में। तो आध्यात्मिक सामर्थ्य क्या है, या फिर शक्तिशाली बनने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले शक्तिशाली बनने के लिए चाहिए शक्तिशाली स्मृति, क्योंकि शक्ति तो है परंतु विस्मृत, आत्मा भूल गई है अपनी ही शक्ति को। यदि उसे कोई याद दिला दे तो वो जाग जाएगी, जैसे हनुमान को जामवंत ने याद दिलाया, जामवंत ने, कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम में वो सारी शक्तियां हैं। जलति लांज गए अचरज नाही, ये समुद्र कुछ भी नहीं है, बचपन में तो तुमने क्या कर दिया था, सूर्य को ही निगल लिया था, इतने पावरफुल तुम हो। यदि ये याद दिलाया जाए और आत्मा को याद आ जाए, स्मृति आ जाए उसको, तो अपने आप सारी शक्तियां जागेगी। स्पिरिचुअल डायनामाइट, स्पिरिचुअल डायनामो, स्पिरिचुअल जायंट, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्पिरिचुअल जायंट बन जाओ, स्पिरिचुअल डायनामाइट बन जाओ, स्पिरिचुअल पावर डायनामो स्टोर हाउस। तो उसके लिए सबसे पहली चीज कौन सी है? स्मृति। सारी मुरलियां एक ही चीज कर रही है, जागरण। आत्मा विस्मृत है। बाबा ज्ञान सुनाने से भी ज्यादा क्या काम करने आया है? जगाने, बंधनों को काटने, मुक्त करने। जीसस क्राइस्ट का एक वचन है, आई हैव नॉट कम विथ पीस इन माई हैंड बट आई हैव कम विथ स्वॉर्ड इन माई हैंड। मैं शांति लेकर नहीं आया हूं, तलवार लेकर आया हूं। ये मत समझना कि मैं शांति लेकर आया हूं, ये मत समझना मैं शांति स्थापन करने आया हूं, मैं तलवार लेकर आया हूं। तलवार अर्थात तुम्हारे सारे बंधनों को काटने, जागरण अर्थात स्मृति। तो समर्थ बनने के लिए सबसे पहली चीज जो आवश्यक है वो है स्मृति। एक तो बाबा हमें स्मृति दिला रहा है और दूसरा हमें अपने आप को स्मृति दिलानी है। हमें क्या करना है? खुद को ही स्मृति दिलानी है। 7 दिन का कोर्स किसको कराना है? खुद ही को। कब से चालू करेंगे? फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो जागरण। दूसरा शक्तिशाली संकल्प। समर्थ बनने के लिए क्या चाहिए? शक्तिशाली थॉट्स, पावरफुल थॉट्स चाहिए। कहां से आएंगे? मुरली से। आज कहा है बाबा ने, तुम मुरली पढ़ते हो पर नोट नहीं करते और फिर वही वही प्रश्न पूछते रहते हो। कल था, अच्छा कल था। पढ़ते हो, नोट नहीं करते और फिर वही वही पूछते रहते हो। बंधन कैसे कटेंगे, पुरुषार्थ क्या करें, अमृत वेला मिस होता है क्या किया जाए, योग शक्तिशाली नहीं है, मुरली याद नहीं रहती है, मुरली को याद कैसे रखे, याद भूल जाती है। शक्तिशाली संकल्प निकालने हैं उसमें से और उनको याद रखना है ताकि वो काम आए। तो समर्थ बनने के लिए शक्तिशाली संकल्प की आवश्यकता है। फिर समर्थ बनने के लिए शक्तिशाली समान, संकल्प में आ गया परंतु हाँ, शक्तिशाली चिंतन। केवल ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाएगा, उस ज्ञान का चिंतन आवश्यक है। वो ज्ञान मेरा बन जाए, अपना बनाने के लिए उसका चिंतन आवश्यक है। चिंतन अर्थात उसके बारे में सोचना, चिंतन अर्थात उसका विस्तार करना, चिंतन अर्थात उसकी गहराई में जाना, चिंतन अर्थात वो क्यों कहा है, किस अर्थ से कहा है, उसको जानना। तुम वनवाह में हो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहां खुशियां नहीं मना सकते, यहां सब वेस्ट है। शक्तिशाली चिंतन, केवल चिंतन नहीं, सुपरफिशियल चिंतन नहीं, शक्तिशाली चिंतन। यदि ये एक पॉइंट है और ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, तो ये जो पॉइंट है ये योग है, चिंतन ये है, परंतु चिंतन योग नहीं है। और उसके बाहर भी एक सर्कल है, वो है संसार, संसार का चिंतन, ये है ज्ञान का चिंतन, परंतु ज्ञान का चिंतन भी योग से दूर है बहुत, क्योंकि योग केवल चिंतन नहीं है, परंतु विधि वही है। ये जो सांसारिक चिंतन यहां है परिधि पर, इस सांसारिक चिंतन से या इस सोच से एटलीस्ट इस सोच तक पहुंचना है, ये जो है ये ज्ञान का चिंतन है। ज्ञान के चिंतन का भी एरो जो है वो शायद बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, परंतु योग है उसका कोई एरो नहीं है, वो अपने आप में है इनसाइड। इसलिए सबसे पहले तो सांसारिक जो चिंतन है उस चिंतन से ज्ञान के चिंतन तक पहुंचना, ताकि आंतरिक यात्रा आरंभ हो, जो कि बिंदु है, जो कि योग है। जब तक इस यात्रा में व्यक्ति नहीं उतरता, तब तक वो आंतरिक यात्रा में भी नहीं पहुंच सकता। इसके लिए मुरली केवल लिखना और थोड़ा सा पढ़ना, इसके थोड़ा सा आगे जाना है, उसका गहराई से अध्ययन करना है, स्टडी। स्टडी भी कैसी? डीप स्टडी, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया जाता है थीसिस के लिए, कितने साल लगा देता है वो थीसिस कंप्लीट करने को, पीएचडी में या पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय, दिन रात उसके बारे में सोचते रहता है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता है, छोटा सा टॉपिक होता है पर पूरी एनर्जी लगा देता है उसमें। उसी तरह बाबा का एक शब्द या एक महावाक्य एक थीसिस का टॉपिक है। पावर ऑफ पेन, पावर ऑफ माउथ, अगले संडे को लाए बाबा ने, मुख की शक्ति और कलम की शक्ति, इसमें बहुत पावर है। इसके लिए चिंतन को क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? एक होता है मुरली पढ़ना और उसके ऊपर चिंतन करना, टॉपिक पढ़ना और उसका चिंतन करना, परंतु शक्तिशाली कैसे बने वो? पॉइंट्स निकालने से। और फीलिंग्स आ जाए, इमोशंस आ गए। जो चिंतन, एक चिंतन यहां किया जाता है, ये धरती है, इस धरती पर बैठकर एक चिंतन किया जाता है। एक चिंतन है कि इस धरती को छोड़कर व्यक्ति जब ऊपर निकल जाता है इस आकाश में, देह यहीं छूटता है और उसके संकल्प ऊपर उठ जाते हैं, टॉपिक भी यहीं छूट गया, वो जो मुरली है वो भी यहीं छूट गई, ये सब नीचे रह गया, और ऊपर उसके विचार जब बहुत हायर प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, तो इस सृष्टि में जो कुछ भी है उस टॉपिक से रिलेटेड अपने आप वो वहां पहुंचने लगता है, उसके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आज तक सृष्टि में, इतिहास में, सृष्टि में जिसने उस विषय पर जो जो बोला है वो सब वहां अपने आप आने लगेगा। परंतु हम जो चिंतन करते हैं, वो एक मुरली हमारे पास है, जैसे ये एक पेज है, इसको हमने पढ़ा, फिर एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर चौथी बार में हमको बहुत सारी चीजें पता हो गई, फिर बहुत सारी चीजें याद हो गई, बहुत सारे शब्द याद हो गए, फिर धीरे धीरे पैराग्राफ के पैराग्राफ याद हो गए, फिर धीरे धीरे पैटर्न के पैटर्न याद हो गया, फिर धीरे धीरे ये भी पता चल गया कि ये यहाँ खत्म होता है, ये यहाँ चालू होता है। ये सारा जो हो रहा है ये लोअर प्लेटफॉर्म है, फिर भी ये धरती का तल है। चिंतन इसको सबको छोड़ दे नीचे और वो ऊपर चला जाए, अशरीरी अवस्था। इसके लिए जितने कवि हुए हैं, जितने स्कल्प्टर मूर्तिकार हुए हैं, जितने महान आविष्कारक हुए हैं, ये सभी निसर्ग प्रेमी थे, प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले थे, क्योंकि उनके विचार इतने ऊपर चले जाते थे कि नीचे की सारी चीजें वो भूल जाते थे, उनको कुछ खबर ही नहीं रहती थी क्या है नीचे, क्या हो रहा है। और उस अशरीरी अवस्था में कविता लिखी जाती थी उनसे, उस अशरीरी अवस्था में गीत लिखे जाते थे, गीत। रविंद्रनाथ टैगोर शायद इतना बड़ा कवि शायद ही कभी हुआ होगा, पाश्चात्य जगत में सबसे बड़ा कवि परसीवी शैली हुआ है, पर उससे भी अधिक कविता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, उससे भी अधिक कविताएं लिखी है, खाली लिखी नहीं है, गाई भी है, बंगाली में, इंग्लिश में, हर भाषा, दोनों भाषाओं में। उनकी जब मरणासन्न जब थे, जब शरीर जब छोड़ने वाले थे, तो किसी मित्र ने पूछा था कि कैसा भाव है तुम्हारा, तुमको तो बहुत संतुष्टता से जाना चाहिए कि तुमने जितना किया है काव्य जगत में कार्य शायद ही किसी कवि ने किया है, बंगाली में जितनी कविता लिखी है और वो जो नया उसमें नयापन जो लाया है साहित्य में शायद ही किसी लेखक ने किया है, परसी बसी शैली की भी इतनी कविताएं नहीं है जितनी रविंद्रनाथ की है। वो कहते हैं अभी तो वो मुख्य कविता लिखनी बाकी ही है अभी तो दैट इज येट अनकम्पोज्ड अनसंग, वो जो गीत है अभी तक मैंने नहीं लिखा है जिसके लिए मैंने जन्म लिया था, ये तो कुछ भी नहीं है। वो कवि का भाव है। पिकासो नाम का बहुत बड़ा पेंटर हुआ है, पिकासो सॉफ्टवेयर भी है पिकासो के, वो एक पेंटिंग करता था तो वो पेंटिंग करते करते इधर उसमें खो जाता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसको पता नहीं, भोजन कब करना है, पीना कब है, खाना कुछ उसको खबर नहीं रहती थी, उस पेंटिंग में इतना खो जाता था वो। एक मित्र के सामने उसने एक पेंटिंग की थी और वो मित्र ने देखा भी था कितनी इसकी तल्लीनता है। और उसी समय में जब ऐसे महान पेंटर जब होते हैं, चित्रकार, झूठे चित्रकार भी निकल जाते हैं मार्केट में जो कि वैसी पेंटिंग करते हैं और कहते हैं ये हमारे हमने की है, जो की है ओरिजिनल पिकासो ने, और परंतु वैसी की वैसी निकालेगी और अपना नाम से उसको उसका सेल करेंगे, उसके कमर्शियल बिजनेस बनाएंगे उसका। तो एक मित्र ने एक बार पिकासो की ही पेंटिंग जो बनाई थी पिकासो ने वही लेके आया उसको दिखाने के लिए और उसको पूछा कि क्या ये तुम्हारी है क्या पेंटिंग, या तुमने ही निकाली है या किसी और ने निकाली है और वो अपने नाम से उसे बेच रहा है, क्या ये ऑथेंटिक है, सत्यापन करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए वो लेके आए। तो पिकासो कहता है कि ये मेरी निकाली हुई नहीं है, परंतु वो जो व्यक्ति था मित्र उसको ये पूरा विश्वास था कि ये पिकासो ने ही निकाली है और उसके सामने ही उसने वो पेंटिंग की थी। तो पिकासो उसको कहता है, वो कहता है कैसे, पिकासो उसको कहता है कि जहां तक चित्र निकालने का सवाल है, उतारने का, ये तो मैंने ही की है, मतलब पेंटिंग तो मैंने ही की है, परंतु फिर भी ये ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि मैंने अपने आप को ही कॉपी किया है, मेरी जो स्टाइल है पेंटिंग करने की पुरानी वैसी ही है, इसमें नयापन कुछ भी नहीं है, इसलिए ये कॉपीड है, फोनी, आर्टिफिशियल है, मैंने ही निकाली, परंतु फिर भी मैंने अपने आप को ही कॉपी किया, मेरा जो पुराना मैं है, मतलब मैं जो हूं एज अ पेंटर, उस पेंटर को ही कॉपी किया, वास्तव में मुझे कुछ करना चाहिए था, नया करना चाहिए था, मैंने अपने आप को ही धोखा दिया है इसमें, नया होता है तो नया कहां से आएगा। और चिंतन जो है, क्रिएटिविटी जो है, थिंकिंग इज द एनिमी ऑफ क्रिएटिविटी. विचार करना, सोचना, ये रचनात्मकता में बाधा है. कभी विचार नहीं करता है, कभी सोचता नहीं है, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, वो बोलूंगा, वो बोलूंगा, फिर वो बोलूंगा, फिर ये निकालूंगा, फिर वो निकालूंगा. वो सहज स्फुरित है, क्योंकि विचार उस तल को छोड़ दिए धरती के, वो ऊपर चले गए हैं. और इसके लिए जो निकल रहा है वो नहीं, उसके अपने आप नहीं कर रहा है वो. एज इफ रेन्स फ्रॉम हेवन, एज इफ सॉन्ग्स फ्रॉम बर्ड्स, अपने आप. इसके लिए जो महानतम कविताएं होती है वो स्वतः ही आती है. महानतम जो गीत गाए जाते हैं वो कोई ऐसा नहीं जैसे हम लोग करते हैं होमवर्क, गीत बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, ये झूठा है. वो तो हम चिंतन के लिए कर रहे हैं, परंतु वो सारे गीत झूठे और वारे सारी कविताएं झूठी है. कविता ऐसी थोड़ी लिखी जाती है, कविताएं तो अपने आप निकलती है. Blight spirit, bird thou never hurt, that from heaven or near it pours thy full heart in profuse strain of unpremeditated art. Percy Bysshe Shelley की कविता है To the Skylark. उसमें वो बात कर रहा है उस मैना से और उसको कहता है कि तुम्हारा ये जो गीत है, blight spirit, blight अर्थात हे अत्यंत आनंदित पक्षी, bird thou never hurt, तुम कभी पक्षी हो ही नहीं. That from heaven or near it, जो कि स्वर्ग से या स्वर्ग के पास में बैठकर pours thy full heart, अपना संपूर्ण हृदय जैसे उड़ेल रही हो, pours thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. कोई मेडिटेशन नहीं किया है, कोई पहले से योजना नहीं बनाई है कि मैं ये कविता लिखूंगी, ये शब्द होंगे, कुछ भी नहीं. Unpremeditated art. Chorus hymeneal or triumphal chant, match with thine, would be all, but an empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want. तुम्हारे सामने ये जो तुम्हारा गीत है, उसके सामने ये जो शादी गीत संगीत, इसमें जो भी गीत बजाते हैं, वो तो बिल्कुल गॉन है. An empty want. Teach me half the gladness. वो पक्षी से कहता है, मुझे थोड़ा आधा तो सिखाओ तुम्हारा ये हुनर, आधा पूरा भी नहीं. Teach me half the gladness, तुम्हारी जो खुशी है. Teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness. यदि मैं सीख जाऊं तो such harmonious madness from my lips would flow. एक दिन मेरे मुख से भी ऐसा ही गीत निकलेगा. The world should listen then as I am listening now. फिर एक दिन सारा संसार मुझे सुनेगा जैसा मैं अब तुझको सुन रहा हूं. चिंतन, चिंतन में भी वो चिंतन अशरीरी अवस्था में अगर किया जाए. चिंतन किस अवस्था में होना चाहिए? अशरीरी अवस्था में, तो ही वो मुरली के, नहीं तो हम वहीं घूमते रहते हैं मुरली के शब्दों में. वही मुरली के शब्द, बाबा कहते हैं, 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 और बाबा कहते हैं, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, बाबा ने वो कहा, और क्लास पूरा. हाथ में कुछ, किसी के कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जो सुना है वो सबको पता था. बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो, बाबा कहते हैं तुम्हें बाप समान बनना ही है, तुम्हें कर्मातीत बनना ही है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्लास पूरी हुई. वो वही है, वही शब्द, वही का चिंतन, और वही बुद्धि घूम रही. इसको यहां छोड़कर आत्मा जब ऊपर उड़ जाए, वहां से कुछ नवीनता आएगी. वो जो संगीत होगा, वो जो गीत होगा, वो जो कविता होगी, वो जो चित्र होगा, सब कुछ नया होगा. तो शक्तिशाली बनने के लिए क्या चाहिए? रचनात्मकता, शक्तिशाली चिंतन, शक्तिशाली रचनात्मकता, क्रिएटिविटी. अभी अभी हमने संडे की मुरली सुनी, उसमें बाबा ने डॉक्टर रॉबर्ट मुलर से बात की. वो एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उसने अपनी डायरी में विश्व में शांति स्थापन करने के लिए एक नियम बनाया था कि रोज एक नया स्वप्न और एक रोज नई आइडिया. इस संसार में शांति हो, इसके लिए क्या नया किया जाए? ऐसे 7000 न्यू आइडियाज, न्यू ड्रीम्स उसने लिखे हैं. हर दिन एक नई आइडिया कि जिससे ऐसा क्या करें कि जिसमें संसार में शांति हो जाए. फिर उसमें कॉन्फ्रेंस, उसमें कुछ आ गया, हर दिन एक नई आइडिया. उसने लक्ष्य रखा था 3000 का, पर जो लिखे उसने न्यू आइडियाज, संसार को आइडियाज की आवश्यकता है, 7000 न्यू आइडियाज दिए उसने संसार को, लिख के रखे जाने से पहले 7000 न्यू आइडियाज। यदि हमसे कोई कहे पुरुषार्थ के बारे में 7000 न्यू आइडियाज बताओ, तो हम कहेंगे बाप को याद करो, वो कहेंगे हमको तो पता है, वो हम कहेंगे अमृत वेला करो, वो कहेंगे हमको भी ये भी पता है। 7000 न्यू आइडियाज, न्यूनेस चाहिए, क्योंकि माइंड जो है रिजेक्ट कर देता है ओल्ड को, उसको नया चाहिए कुछ, और नया आएगा अशरीरी अवस्था में ही आएगा। चाहे कोई क्लास कराना है किसी को और भाषण किसी ने तैयार किया, कितना भी उसे रट ले, पूरा रट ले और वैसा के वैसा सुना दे वो, फिर भी वो शक्तिशाली नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वो बंद गया है शब्दों में। शब्दों में भी नहीं बनना है, वो मैटर में भी नहीं बनना है, उसको वो धरती को छोड़ना ही पड़ेगा, आकाश में चला जाए ऊपर, वहीं से कुछ तो नहीं आएगा। तो शक्तिशाली अर्थात शक्तिशाली चिंतन, तीसरा, चौथा शक्तिशाली अर्थात शक्तिशाली वैराग। तुम वनवाह में हो, तुम्हें यहां कोई भी शोक नहीं रखना है, मुरली के शब्द है, आज बोल दिया, सब वेस्ट है, तुम खुशियां नहीं मना सकते, ये दिए भी है जनाना, ये तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, सच्ची दिवाली अर्थात जिसमें आत्मा जग जाए, बाकी सब गॉन, सारे डेकोरेशन, सारी सब कुछ, सारी मिठाइयां, सारी टोली, सारा ब्रह्म भोजन, सब एक तरफ। सच्ची दिवाली अर्थात जागरण, सच्ची दिवाली अर्थात अंदर जो रावण है वो जल जाए। शक्तिशाली वैराग, और शक्तिशाली बनने के लिए चाहिए शक्तिशाली तपस्या या शक्तिशाली योग, और शक्तिशाली बनने के लिए चाहिए शक्तिशाली मौन, और शक्तिशाली बनने के लिए चाहिए शक्तिशाली एकांत, और शक्तिशाली बनने के लिए चाहिए शक्तिशाली अंतर्मुखता, और शक्तिशाली बनने के लिए चाहिए शक्तिशाली पवित्रता। व्यक्ति जितना पवित्र है उतना शक्तिशाली, सिंपल हिसाब है। जितना कर्मेंद्रिय जीत है, इंद्रिय जीत है, जिसमें जितना संयम है उतना वो शक्तिशाली। जहां इंद्रिया चलायमान है, क्या वो शक्ति है? इंद्रिया लालयित है, ये खाऊं वो खाऊं, ये देखूं वो देखूं, ये हाथ लगाऊं वो हाथ लगाऊं, इसमें क्या है उसमें क्या है, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, बिना संपूर्ण पवित्रता के और बिना संपूर्ण ब्रह्मचर्य के, जहां ब्रह्मचर्य दिन में 10 बार खंडित हो रहा है, जहां ब्रह्मचर्य स्वप्न में खंडित हो रहा है, जहां ब्रह्मचर्य बोल में खंडित हो रहा है, जहां ब्रह्मचर्य दृष्टि में खंडित हो रहा है, आंखें देह को देखती है, तो वहां शक्तिशाली कहेंगे? प्यूरिटी के आधार से ही तो देवता शक्तिशाली है। देवताओं में और सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग की सीमा रेखा क्या है? एक ही है, पवित्रता अपवित्रता। इसके लिए सबसे बड़ा काम जो करना है वो इस पर करना है कि वो अखंडित अनब्रोकन सेलिबसी, अनब्रोकन सेलिबसी जब तक नहीं आती है तब तक। महात्मा बुद्ध ने कहा था कभी, उन्होंने कभी उनके संघ में स्त्रियों को आने नहीं दिया लंबे समय तक, परंतु आनंद और बहुत सारे शिष्य थे, उन्होंने कितना उनको कहा कि तुम सारे विश्व का कल्याण करने चले, उसका क्या दोष है, तुम्हारी पत्नी का, यशोधरा का क्या दोष है, तुम्हारी मां का क्या दोष है? तो उन्होंने फिर लंबे समय के बाद उनको भी आने दिया, उनका एक अपना संघ बना और वो चालू किया। परंतु एक बात वहां कह दी है, रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, कि मैंने सोचा था मेरा ये संघ 1000 वर्ष तक चलेगा, 1000 वर्ष तक, पर जब अब ये स्त्रियां आ गई तो अब 500 वर्ष ही चलेगा, ये कहा है। और भगवान ने जो कर दिया वो कुछ और ही कर दिया। यहां तो उनको ही आगे कर दिया और उनके द्वारा ही रचना कर दी। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, पहला सन्यासी दल क्रिश्चियनिटी में जो स्थापन हुआ, सेंट फ्रांसिस के द्वारा है। अपने आश्रम में दो ही नियम बनाए थे और उनके जो फॉलोअर्स थे बाद के, उन्होंने उन दोनों का ही उल्लंघन किया। पहला नियम था दरिद्रता, पावर्टी, धन नहीं लौटना है, कुछ भी धन नहीं रखना है इधर। और दूसरा नियम था ब्रह्मचर्य। परंतु उसी के जीवन काल में ही जो आश्रम था, एक बार वो कहीं बाहर गए थे, आकर देखा तो उनके शिष्यों ने आश्रम को सजा के रख दिया है पूरा, तरह तरह की चीजें लाई है। उसने तभी कहा ये अब ज्यादा नहीं चलने वाला। कामिनी कांचन, भगवान ने कुछ और कहा, कर दिया। जिनको दबाया गया था, ठुकराया गया था, उनको ही सारी पावर दे दी। ऐसा कार्य इतिहास में किसी ने नहीं किया। महान कार्य उन्होंने भी किए पर ये कार्य नहीं किया कि इनके द्वारा पवित्रता का ज्ञान संसार को सुनाया जाएगा। ये पहली बार है इतिहास में। इसलिए शक्तिशाली पवित्रता, शक्तिशाली ब्रह्मचर्य, शक्तिशाली इंद्रिय जीत अवस्था, जितेंद्रिय बनना है। सारी इंद्रियों पर हमारा वश हो। मुख्य रूप से दो, आंख और जिह्वा। जिह्वा को वश में कर दो तो सारी कर्मेंद्रिया अपने आप चारों खाने चित्त, क्योंकि शरीर में केमिकल्स बहुत है, उधम मचाते हैं, हॉर्मोन्स हाईजैक्स द इंटेलेक्ट। ब्रह्मचर्य को अपहरण करके ले जाते हैं, ब्रह्मचर्य का अपहरण। टॉपिक है। शक्तिशाली स्थिति, समर्थ बनने के लिए शक्तिशाली स्थिति चाहिए, अर्थात अचल अडोल स्थिति, अर्थात किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, शायद सभी ने सुनी होगी, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कितने ही वृक्ष हो, कितनी ही उनकी छाया हो, पर एक पत्ते की भी छाया को तुम मांगना मत। एक पत्ते की भी छाया के लिए भीख मत मांगना कि मुझे छाया मिल जाए। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह की मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। रुकना नहीं, थमना नहीं, थकना नहीं, ये शपथ कर। चाहे कितनी भी बाधाएं, आंधी आ, तूफान आ जाए, रुकना नहीं। और अगर गिर भी गए फिर उठना, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो पथ है उसमें व्यक्ति कई बार गिरता है। पवित्रता के मार्ग में कई बार अगर गिरे फिर उठना, ये महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेद रक्त से, लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कैसा ये दृश्य है कि एक व्यक्ति है जो चल रहा है, और कैसा चल रहा है, लथपथ है, उसका पसीना, उसका रक्त उसके अश्रु, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। ये ब्राह्मण जीवन भी क्या है? अग्निपथ, आग है, चिंगारी, उस अग्नि पर चलना है, यही ये जीवन है। बहुत रोकेंगे, रुकाएंगे, कहा ना उस दिन वही डॉक्टर रॉबर्ट मुलर से, दिल शिकस्त तुमको दुनिया बनाएगी पर तुम मत बनना, तुमको रोकेंगे पर तुम मत रुकना। अकेले मैसेज करो तो क्या करो, सोचो बाप मेरे साथ है, ये दुनिया साथ नहीं है, सब एक तरफ, हम अकेले ही है, अकेले ही व्यक्ति चल रहा है इस पथ पर। इफ दे आंसर नॉट टू थाई कॉल वॉक अलोन, इफ दे कावर म्यूटली फेसिंग द वॉल, ओपन द हार्ट एंड स्पीक आउट अलोन, वॉक अलोन वॉक अलोन वॉक अलोन। इफ दे डेजर्ट यू वाइल क्रॉसिंग द विल्डरनेस, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, एकला चलो रे। इफ दे डेजर्ट यू, यदि वो तुम्हें छोड़ दे वाइल क्रॉसिंग द विल्डरनेस, क्या करो? इग्नाइट thy own heart and with that thundered flame, ignite thy own heart, अपने हृदय में जो मशाल जल रही है उसी से इस पथ को प्रकाशित करो, स्वयं के पथ प्रदर्शक खुद ही बनो, क्योंकि एकांगी पगडंडी है, ये मार्ग जो है अकेले का है, किसी को साथ नहीं बना सकते, कोई भी साथ नहीं आएगा। द पाथ इज नैरो, द पाथ इज स्ट्रेट, जीसस ने कहा है, ये जो मार्ग है मेरे पास आने का बहुत नैरो है और स्ट्रेट है, पर भटकना मत इधर उधर, स्ट्रेट एंड नैरो, नैरो इज द पाथ एंड स्ट्रेट। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए, दो को नहीं लेके आना, चिंतन पार्टनर, योग पार्टनर, मधुबन जाने का पार्टनर, लिखने का पार्टनर, पुरुषार्थ का पार्टनर, सेवा का पार्टनर, अपार्टनर भव, अकेली आत्मा। अभी अभी परसों मुरली में आया था ना, अकेली आत्मा, केवल अकेली आत्मा है, उसका कोई नहीं। यहां पर जो भी है, अगर लग रहा है कि इसको ये मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा, ब्रह्म, तो शक्तिशाली बनने के लिए बाबा ने कहा ब्राह्मणों को एक कर्तव्य के लिए तत्पर रहना है, कौन सा कर्तव्य? समर्थ बनना है। समर्थ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला बताया समर्थ स्मृति, दूसरा समर्थ चिंतन, तीसरा समर्थ योग, चौथा समर्थ वैराग, पांचवा समर्थ योग तपस्या, छठवा समर्थ स्थिति, समर्थ मौन, समर्थ एकांत, समर्थ अंतर्मुक्ता, समर्थ ब्रह्मचर्य, समर्थ स्थिति, कितने हो गए? 11 और 12, 10, समर्थ त्याग, एकांत, वो सब हो गया। तो ये सारी चीजें चाहिए, वृत्ति दृष्टि सब कुछ डाल दो फिर उसमें, तो ही व्यक्ति इस समर्थ स्थिति में पहुंचेगा। और अकेले चलने की हिम्मत, पुरुषार्थ के मार्ग में कोई किसी का साथी नहीं, वो मदद ले सकते हैं सबकी, इसका चिंतन उसका चिंतन, ये वो, ये क्लास वो क्लास, इसकी क्लास उसकी क्लास, वो क्लास में भी नहीं फंसना, और क्लास कराने वाले में तो बिल्कुल नहीं, वो सबसे बड़ी माया है। केला खा लिया, छिलका फेंक दो, अब छिलके कोई पकड़ के मत रखो, बहुत ही अच्छा छिलका है, बहुत ही अच्छा छिलका है। क्या ओम शांति।